आप जो बात पूछ रहे हैं इसका सीधा सीधा तो कोई निर्णय नहीं है, लेकिन एक बात यदि आप समझ लें कि जीव का बंधन क्या है, तो इसका उत्तर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा या निकाल लेंगे आप। जीव का बंधन क्या है, इसमें सबसे पहले तो जीव के बारे में हम जरा याद कर लें कि जीव अर्थात मैं क्या हूं, तभी इसका निर्णय हुआ कि बंधन क्या है। जीव उसे कहते हैं जो जानता है, या जीव उसे कहते हैं जिसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। लेकिन ईश्वर में और जीव में एक विशेष अंतर है। जो हम ईश्वर के बारे में कहते हैं कि वो भी चेतना है, तो वो उसको कहा जाता है सर्वव्यापक चेतना है, सब कुछ जानने वाली है। अब चेतना मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरी जो सीमा है जानने की बड़ी ही लिमिटेड है। इसका मतलब मैं लिमिट में बंधा हुआ, सीमा में बंधा हुआ, इसलिए मुझको व्यक्ति कहा जाता है, इंडिविजुअल कहा जाता है। तो ये जो सीमित मैं है या सीमित चेतना है, ये बंधन में, बंधन के कारण सीमा में है। यदि बंधन से खत्म हो जाए तो ये निस्सीम है, ये अनलिमिटेड है। इसीलिए जीव और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता जब इसका बंधन खत्म होता है। इसीलिए उसका नाम मोक्ष है, सदगति है, निर्वाण है, बंधन मुक्ति। तो इसका मतलब यह हो गया कि सारे शास्त्र मुझको एक ही चीज सिखा रहे हैं कि तेरा बंधन क्या है। जब जीव को अपने बंधन का बोध होता है सही रूप में, तब उसके अंदर प्रश्न उठता है, स्वाभाविक प्रश्न उठता है, इस बंधन से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी, क्योंकि बंधन का नाम ही होता है दुख। कोई यदि गुलाम है तो पूरा जीवन दुखी है उसका। तो इस गुलामी से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसकी बस यही सोच रह जाती है। तो इसीलिए जब तक आप अपने बंधन का सही सही एनालिसिस नहीं करोगे, उसको शास्त्रों के आधार पर समझने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि मनचाहे आधार पर आपको सही समझ नहीं आएगी, शास्त्रों के आधार पर ही इस बात को आपको एग्जैक्टली समझना पड़ता है। तो आप देखो, जो सबसे मोटा बंधन आपको नजर आता है वो संसार का बंधन नजर आता है। एम्प्लॉई है तो बॉस का बंधन है, गृहस्थी है तो परिवार का बंधन है, संसार है बाहर का तो वस्तुओं का बंधन है, प्रकृति का बंधन है, मुझे तो हर चीज मन अनुकूल चाहिए, लेकिन कभी मन अनुकूल मिलती है, कभी मन प्रतिकूल मिलती है। जो वस्तु भी, जो व्यक्ति भी मुझको मन अनुकूल चाहिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसके अंदर मन की प्रतिकूलता भी बनी हुई। तो हर मामले में मैं अनुकूल परिस्थिति चाहता हूं, लेकिन मुझको पता है, अच्छी तरह से जानता हूं, जिसमें अनुकूलता है उसमें प्रतिकूलता संग ही है, दो में से कोई एक चीज मिलेगी मुझे। तो इसीलिए पूरा जन्म मेरा बीत जाएगा, लेकिन कभी भी मुझको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ये जो अनुकूलता प्रतिकूलता की स्थिति है हर वस्तु में, कोई भी वस्तु का नाम ले लो, चाहे व्यक्ति का नाम ले लो, ये बाहर का बंधन है जो हमको बड़ा मोटा बंधन है जो खुली आंख से दिखाई पड़ जाता है। तो ये बात बड़ी आसानी से समझ में भी आ जाती है। लेकिन फिर भी हम इसको इस तरीके से सोचते नहीं है। ये शास्त्र हमको बता रहा है कि आपने इस तरह से सोचना है, दुनिया की हर वस्तु द्वंद्व रूप है। द्वंद्व का मतलब ये होता है अनुकूलता और प्रतिकूलता। द्वंद्व को संघर्ष भी बोलते हैं। अनुकूल परिस्थिति ऑटोमेटिकली प्रतिकूलता में वो निरंतर बदल रही है, और प्रतिकूल परिस्थिति निरंतर अनुकूलता में बदल रही है। ये द्वंद्व चक्र प्रकृति में स्वाभाविक चल रहा है हर मामले में। आज आपका बेटा बड़ा प्रिय है, पिता को बड़ा प्यार करता है, 20 साल बाद पता लगा वह बेटा जो पिता का दुश्मन बन गया। जो आज बेटा पिता को प्यार करता है, एक घटना ऐसी घट जाएगी बेटा पिता का दुश्मन बन जाएगा। आप देखते रह जाओगे, अरे मैंने तो उसको अपना समझा था, कितना इसको सिखाया था, एक बात से बिगड़ गया। आप प्रकृति के सिद्धांत के विरुद्ध सोच रहे थे, आपको होश नहीं था कि कोई भी वस्तु किसी वक्त भी जो पूरी तरह से अनुकूल है वो पूरी तरह से प्रतिकूल किसी क्षण भी हो सकती है। प्रकृति का स्वरूप ही यही है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, और समता विलास में तो बड़ा स्पष्ट आप पढ़ते ही होंगे, संपूर्ण प्रकृति परिवर्तनशील और नाशवान है। तो बताइए, जो चीज भी आपकी देह से अलग है, ये कपड़ा भी देह से अलग है, जो चीज भी आपकी देह से अलग है इसको मोटा बंधन कहते हैं, जो इसको आध्यात्मिक भाषा में स्थूल कहते हैं। ये स्थूल बंधन है, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी गहरी अज्ञानता है क्योंकि हम संसारी के तरीके से सोचते हैं, शास्त्र के अनुसार नहीं सोचते हैं, हम संसारी तरीके से सोचते हैं। इसलिए सारी जिंदगी हमारी बुद्धि का निर्णय कोई नहीं हो पाता, भटकते ही रहते हैं। तो सबसे जो मेरा स्थूल बंधन है, ये जो बाहर की प्रकृति है मेरी अपनी देह को छोड़कर, क्योंकि ये जरा थोड़ा बारीक मसला हो जाएगा, ये मुझे दिखाई पड़ता है, इसका एनालिसिस बड़े आराम से कर सकता हूं। तो ये पूरी का पूरा संसार, पूरी की पूरी प्रकृति, ये परिवर्तनशील और नाशवान है। सारी दुनिया इसी में सुख तलाश कर रही है, इसी को लक्ष्य बना के जी रही है। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, प्रेमी ऐसी स्थिति भी एक दिन हो जाए कि सूर्य चंद्रमा पवन धरती पानी सब पर तेरा पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाए, तब भी इस असंतोष से तुझको मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जो तू काबू में करेगा वो तो नाशवान परिवर्तनशील है। तू नाश को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, चेंज को अपनी स्ट्रेटजी से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम भ्रमित लोगों के बीच में पले हैं, उन्हीं की बातों के निर्णय सुनते रहते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में उन्हीं के अनुसार निश्चय बन जाते हैं, फिर तर्क वितर्क करते रहते हैं। यदि समता विलास को आपने ध्यान से पढ़ा होता कभी भी, तो सबसे पहले ये मोटे बंधन का निर्णय हो गया होता अब तक। कैंप करे हुए भी शायद 10-15 साल हो गए होंगे, तो 15 साल में ये तो अध्ययन की ABCD थी भैया, यही हमने नहीं सीखा, क्योंकि शास्त्र पढ़े नहीं ध्यान से कभी, और पढ़ना तो छोड़ उसकी जरूरत ही नहीं समझी। ऐसे ऐसे लोग देखे, सत्संगी देखे हैं मैंने, जो सत्संग में बाद में इरेगुलर हो जाते हैं। पूछो भाई क्यों नहीं आते, तो कहते हैं वही 5-7 बातें सत्संग में बताई जाती हैं कि ईश्वर है, उसे डरना चाहिए, वो सब कुछ देख रहा है, समझनी, कोई पाप नहीं करना चाहिए, किसी दुखी व्यक्ति को उसकी मदद करनी चाहिए, बेईमानियां नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने 5-7 बातें बताई ये हम करते हैं। और सत्संग की क्या जरूरत। तो सब तरह के लोग होते हैं, तो इसीलिए किसी के बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिसने भी इस बंधन से मुक्ति पानी है, जिसने अपनी तरफ देखना है, अपनी जिंदगी को बर्बादी से बचाना है, उसी ने गंभीरता से सोचना है। ये गुरु उसी के लिए है, शास्त्र उसी के लिए। जो अपने प्रति गंभीर है, शास्त्र की रचना सत्पुरुषों ने उन्हीं के लिए की है, ईश्वर ने इसीलिए शास्त्र प्रकट किए। तो उनको तो गंभीर बुद्धि धारण करनी ही पड़ेगी यदि वो अपने प्रति गंभीर है। तो इसीलिए सबसे पहले ये मोटा बंधन आपको समझाया जाता है शास्त्र के द्वारा कि सारी प्रकृति परिवर्तनशील और नाशवान है, इसीलिए यह पूर्ण दुख रूप है। यह है समता विलास का निर्णय और यही गीता का निर्णय है, और धरती पे जो भी सत्पुरुष आया उसी ने यही निर्णय दिया। हम तो वैदिक काल को सबसे प्राचीन जानते हैं, उससे पहले तो कुछ अवेलेबल ही नहीं है। तो वैदिक काल में उपनिषद में भी आ रहा है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। अब बताइए मैं कौन से निर्णय को लेकर परिवार पाल रहा हूं, कौन से निर्णय को लेकर दुनिया को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, दुनिया को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, कौन सा निर्णय काम कर रहा हूं? यदि मैं इसके प्रति गंभीर हूं तो मैं कंफ्यूजन में, ये मेरा अटर कंफ्यूजन है, क्योंकि शास्त्र का निर्णय मैं देख ही नहीं रहा। जो वैदिक काल से यह निर्णय चला आया है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य, मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। तो इसीलिए सत्पुरुष जीने का तरीका क्या बता रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है उनका, काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, यह जीने का तरीका है। और मैं क्या कर रहा हूं संसार में, सुख किसे कहते हैं, कामनाओं भोगों को बढ़ाओ और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करो, यह जीने का तरीका है संसार का। बड़ा स्पष्ट है या नहीं है, इसमें कोई कई आपको कई कंफ्यूजन नजर आता है? हर पिता बच्चों के लिए यही करके जाता है, और इसी में जीवन की सफलता अपनी समझता है, बच्चों की समझता है। लेकिन जिसकी बुद्धि में होश है या जो शास्त्र या जो सत्पुरुष हमारी बुद्धि को होश में लाना चाहता है, वो ये कह रहा है, काम भोगान निवर्तयेत, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह जानता है कि सारी प्रकृति दुख रूप, प्रकृति नाशवान है, परिवर्तनशील है। इसमें तूने यदि लक्ष्य बना लिया अपना, तेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी, ये ऋषि जानता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये बंधन है। अभी तो इतना सबसे मोटा बंधन ही हमारी समझ में नहीं आता, बारीक तो क्या समझ में आएगा। तो बड़े स्पष्ट निर्णय है ना। तो बताइए, निर्णय है सत्पुरुषों का कि कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, अर्थात जीने का रास्ता मनुष्य के लिए यह बनाया गया। मनुष्य के जीने का रास्ता यह बनाया गया, इसीलिए गुरु श्रद्धा का मतलब ही यही है कि गुरु की बात को जैसी वो लिख रहा है वैसी ही समझने की कोशिश करें। और जिस दिन आपका निर्णय भी वही हो जाए जो गुरु का है, इसका मतलब आपने समझ लिया। जब तक आपके निर्णय में और गुरु के निर्णय में डिफरेंस है, तब तक आपको गहरा एनालिसिस निरंतर करते रहना चाहिए, इसी का नाम है मनन। पढ़ा तो आपने एक बार में लिया, नॉलेज भी एक बार में गेन कर ली, लेकिन समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। समझ क्या आई? हाँ कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा समाज में होता कहाँ है, संभव कहाँ है, प्रैक्टिकली होता ही नहीं ऐसा,
हो गया जस्टिफिकेशन तैयार आपके लिए।
तो अब बताइए कि जब तक आप इसको बंधन करके ना देखो संपूर्ण प्रकृति को, तब तक आप अगले बंधन से मुक्ति की बात क्यों करोगे? अब दूसरे बंधन की बात सोचिए, दूसरा बंधन क्या है आपको? देखिए बंधन की बात हो रही है किसके लिए? जीव के लिए हो रही है, वो आपका दिमाग से हटना नहीं चाहिए। और जीव कौन है? जो जानता है। मैं प्रकृति को जानता हूं, प्रकृति का बंधन क्या है ये शास्त्र के द्वारा मैं जानता हूं, जानने वाला तो मैं ही हुआ ना, तो ये मेरा बंधन है। तो दूसरा बंधन क्या है? इस व्यक्ति को या इस जीव को अपनी देह का है। जीव का दूसरा नाम देही है, शास्त्र में इसको देही कहा गया है। और देही किसे कहते हैं? जो देह धारण करता है। और देह का यदि एटिमोलॉजी देखी जाए, उसका यदि उसका मीनिंग देखा जाए, तो ये देह जो शब्द है ये देह धातु से बना है। संस्कृति देखी जाए तो देह का मतलब होता है, वहां लिखा है कि लेप चढ़ा देना या प्लास्टर चढ़ा देना। तो देह का मतलब ऐसे शास्त्र में थोड़ा यूज किया देह और देही शब्द। देही पर देह प्लास्टर की तरह चढ़ी हुई है, इसका मीनिंग ये है। जिस प्रकार कपड़ा मेरी देह पे चढ़ा हुआ है, उसी प्रकार ये पूरी की पूरी देह जो है स्थूल देह जीव के ऊपर प्लास्टर की तरह चढ़ी हुई है। तो दूसरा बंधन क्या हुआ मेरा? कि मैं अपने आप को देह करके जान रहा हूं, मैं देह हूं। अब बताइए इस एक गलतफहमी के कारण आप ना अध्यात्म समझ सकोगे, ना ईश्वर समझ सकोगे, ना दुख समझ सकोगे, ना सुख समझ सकोगे। आपको कोई शास्त्र समझ में ही नहीं आएगा जब तक आप इस एनालिसिस को शास्त्र के द्वारा ही नहीं सीखोगे। तो ये एनालिसिस तो वहां पे है, मैंने नहीं सीखा, मैंने देह और देह शब्द पढ़ लिए खाली। और लगा विश्लेषण करने सांसारिक तरीके से, जैसे संसारी लोग करते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचता ही नहीं। अब बताइए कि मैं अपना कल्याण चाहता हूं और समझ अपने बारे में मुझे कुछ है नहीं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा? तो इसलिए महाराज जी संत अभिलाष में पूरी तरह से इन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव को जो दूसरा बंधन है, जो इस बाहर की प्रकृति के मुकाबले में बारीक है, क्योंकि देह के प्रति गहरी गफलत है ना हमारे अंदर, देह के प्रति गहरा मोह है। तो मोह में आदमी कुछ का कुछ समझता है, तो गहरा मोह होने के कारण ये थोड़ा बारीक बंधन हो गया मेरा। तो मैं अपने ही देह के बंधन में हूं, किस अज्ञानता के कारण? कि मैं देह हूं। तो मैं जब देह हूं तो बताइए सारे निर्णय आपके देह करके होंगे नहीं होंगे? ये बच्चे मेरे हैं और मेरे हो गए, मेरी मेरे ही शरीर का एक्सटेंशन हो गया वो। अब जो प्रकृति स्थूल रूप में बाहर थी वो मेरी हो गई। बच्चा मेरा हो गया नहीं हो गया? बच्चा माँ के सामने मर जाए तो जान निकल जाएगी माँ, जैसे जान उसके बच्चे में बसी हुई, दोनों इतना मोह बढ़ गया दो शरीरों में कि उसका अटैक होता है तो उस पर अटैक हो जाता, दो शरीर मिलकर एक हो गए। जैसे पति के लिए अर्धांगिनी होती है, उसका आधा अंग हो गया नहीं होगी, तो इतना गहरा मोह हो जाता है समाज की तरह से सोचते सोचते देखते देखते कि एक का दुख दूसरे का बन जाता है। तो शास्त्र आपको तो मोह से मुक्त करेगा नहीं करेगा? शास्त्र सामाजिक परिभाषा नहीं पढ़ाएगा, शास्त्र तो ये पढ़ाएगा तेरा बंधन क्या है। तो अब बताइए मुझे, मैं देह हूं इसके कारण देह के अंदर जितने भी विकार हैं आपके अंदर सारे आपके हो गए नहीं हो गए, नेचुरली आपके हो गए नहीं हो गए, इसकी डिस्क्रिप्शन महाराज जी बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं कि देह पांच तत्वों से बनी है, पांच तत्वों के पांच विकार होते हैं जिनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भी अपने आप को देह करके जीवन व्यतीत करता है, अपने आप को देह समझता है, ये पांच विकार उसके अपने हो जाते हैं। अपने मतलब ये पांच विकारों में उसका जीवन हो जाता है। तो आप जितना भी परिवार का पालन करते हो वो मोह के अंतर्गत कर रहे हैं। कर्तव्य का तो आपको दूर दूर तक बोध ही नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है अपने बारे में आपको। जब अपने आप को ही कुछ का कुछ समझ रहे हो तो कर्तव्य भी कुछ का कुछ समझोगे आप। सही कर्तव्य क्या है आपका, आप कैसे निर्णय करोगे इसका बताओ। इसीलिए आपके अंदर कर्तव्य बोध भी शास्त्र पढ़ के भी नहीं आ सकता, क्योंकि शास्त्र की वो बात तो आपने सीखी नहीं किया, तुम हो कौन। तो अब विचार करो जरा आप कि मैं अपने बारे में ही कितना कंफ्यूज्ड हूं तो शास्त्र मेरी कैसे समझ में आएगा, वहां जो कर्तव्य वर्णन किया वो मेरी कैसे समझ में आएगा। तो इसीलिए गुरु कह रहा है कि पहले ये समझो कि तुम जीव हो, तुम जानने वाली सत्ता हो, तुम्हारे अंदर चेतना है, और देह के बारे में वो कह रहे हैं कि ये जड़ है। तो दूसरी बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है, जब देह जड़ है, महाराज जी कह रहे हैं कि इस जड़ वस्तु को चलाने वाली इस देह के अंदर जान है, और कह रहे हैं उसी का नाम ईश्वर है। तो वो चेतन सत्ता इस देह को चला रही है, इस जड़ देही को चेतन सत्ता चला रही है। और मैं कंफ्यूज्ड हूं, किस क्या कंफ्यूज्ड हूं, मैं चला रहा हूं। बल्कि ये विचार भी आपके अंदर नहीं आता कि मैं चला रहा हूं, क्योंकि यदि मैं चला रहा हूं तो आप तो देह से अलग हो गए थे। आप ये सोचते हो कि ईश्वर मुझे चला रहा है, जब आप देह हो तो क्या सोचोगे कि ईश्वर मुझे चला रहा है, इसलिए यहां भी आप फेल हो गए सही बात समझने से। इस अज्ञान को लेकर जब शास्त्र पढ़ोगे तो फिर आपकी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने बारे में आपको आप गलत सोच रहे हैं तो उनका निर्णय वहां भी गलत हो जाएगा। और देह के बंधन में मैं हूं, ये बात मेरे अंदर जो भय बना रहता है वो सिद्ध करती है। मेरे अंदर भय नहीं बना रहता है कि मैं मर जाऊंगा। अब सत्पुरुष आपको सिखाते हैं तू देह नहीं है तू नहीं मरेगा। अब देखो सिखा रही है कितना नहीं सिखा रही है, कोई ऐसा शास्त्र है जहां ये बात नहीं सिखाई जा रही है। तो विचार करो कि हर जगह ये बात सिखाई जा रही है तब भी मैं नहीं सीख रहा हूं, इतने गहरे मोह में हूं। साधारण सत्संग सुन के मैं चल पड़ूंगा मेरी मंजिल पार हो जाएगी ऐसा मैं समझने लगता हूं। ये बारीक विश्लेषण सत्संग सुन के नहीं होता कभी भी, ये स्वाध्याय से ही होता है, क्योंकि वहां खुला टाइम होता है आपके पास सोचने का। एक सेंटेंस आपके सामने है, आप गहराई से विचार कर रहे हो, सत्संग में विचार का मौका मिलेगा आपको? सेंटेंस पूरा हुआ निकल गया दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, वहां तो नदी के प्रवाह की तरह विचार बह रहे हैं, आप कहीं रुके ही नहीं, वहां बीच में कहां मनन करोगे, आप कहां गहराई से अपने बारे में सोचोगे, मौका ही नहीं मिलेगा आपको। वहम हो जाएगा कि मैं सत्संगी। तो कितनी जगह महाराज जी ने इस बात को लिखा ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत। मैंने सोचा कभी क्या क्या कह रही है वाणी, ये संसार सराय की तरह से है। संसार के मतलब होता है देह और संसार, ये दोनों मिलकर संसार कहलाते हैं। अभी तो विश्लेषण चल रहा है बंधन का, इसलिए दो चीज अलग की जा रही हैं, अदरवाइज देह संसार एक चीज है और ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों ही जड़ हैं। इसीलिए महाजी कहते हैं देह करके संसार है, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है, देह संसार में कोई भेद नहीं। इसलिए पांच तत्व से प्रकृति बनी है, पांच तत्व से मेरी देह बनी है, पांच विकार प्रकृति में है, पांच विकार इस देह के अंदर है, कोई डिफरेंस नहीं। तो जब सारी की सारी प्रकृति नाशवान और परिवर्तनशील है तो देह स्थायी कैसे रहेगी, ये भी नाशवान परिवर्तनशील होगी नहीं होगी। हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है मेरे अंदर कितने परिवर्तन हो चुके, बचपन में कितना शरीर स्वस्थ था, कैसी बेफिक्री से जीता था मैं, अब कितने बंधन बढ़ गए, शरीर में रोग खड़े हो गए, बुढ़ापा नजर आना, बुढ़ापा याद आने लगा है, तो फिर भी मैं गाफिल हूं इसके इसके परिवर्तन से, फिर भी नहीं सोच रहा हूं कि ये परिवर्तन ही नाशवान है। गुरु याद दिला रहा है ये संसार सराए जीव मुसाफिर नीत, ये जो देह रूपी संसार लिए बैठा हुआ हूं ये सराय है और मैं जीव इस सराय में स्टे किया हुआ हूं, ठहरा हुआ हूं। तो इस सराय में ठहरे हुए मुझे याद दिला रही है वाणी, मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत। गुरु याद दिला रहा है तू बैठा क्यों है इसके अंदर, अरे शांति की तलाश कर, इसकी अवधि बीत रही है देह की, धर्मशाला में लिमिटेड डेज के लिए स्टे करने का मौका दिया गया तुझको, वो लिमिटेड डेज है, तू एक दिन भी क्यों खोता है। जिस कार्य को करने के लिए आया है, मान लिया कि मैं टूर पे जाऊं कंपनी के और होटल में 10 दिन के लिए ठहरूं, तो कंपनी 10 दिन का पैसा मुझे क्यों देती है, ताकि मैं कंपनी का कार्य करूं या पहले 2 दिन का होटल का आनंद लूं उसके बाद काम करना शुरू करूं, तो कंपनी मुझे रखेगी या निकाल देगी। तो ईश्वर ने भी मानव देह मुझको इसलिए दी है कि मैं इसका सदुपयोग कर लूं, इस बंधन से मुक्त होने के लिए मैं परिवार पाल रहा हूं, मैं संसार का विकास कर रहा हूं, अपना होश ही नहीं कोई, अपना होश ही कोई नहीं है, उसको मैं कर्तव्य कह रहा हूं। अरे कर्तव्य तो ये था देह के बंधन से मुक्त होना था तुझे, गुरु तुझको इस कर्तव्य की याद दिला रहा है, मानुष जन्म सफल होवे जब प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। गुरु याद दिला रहा है तुझको, तू याद ही नहीं कर रहा क्योंकि तू गफलत में है, गहरे मोह में सो रहा है, होश ही नहीं अपने। तो अब बताइए जो इतना अज्ञानी जीव है उसका बंधन कौन दूर करेगा, वो तो खुद भी यही सीखेगा और दूसरों को भी यही सिखाएगा, जिस गफलत में खुद है दूसरों को भी गफलत में डाल देगा, जैसी चाल उसकी खुद है वो दूसरों को कहेगा तो भी ऐसी चलो, यही चाल ठीक, हम संसारी मिलके यही तो करते हैं, क्या करते हैं। तो इसीलिए लोगों की तरफ नहीं देखा जाता है, जो बुद्धिमान है वो गुरु की तरफ देखता है, गुरु का निर्णय क्या है, पूरी जान लगाता है उसकी बात समझने में, लापरवाही से नहीं पढ़ता है वो। देखा नहीं आपने, जो बुद्धिमान स्टूडेंट होता है वो कहता है मेरे 100% नंबर ही आने चाहिए, मुझे 99% नहीं चाहिए, और जो साधारण स्टूडेंट होता है अरे पास हो गया कोई बात नहीं, पास हो जाना चाहिए, वो फेल भी हो जाता है। और जो बुद्धिमान है 100% नहीं भी आए 95% जरूर आ जाएंगे फिर उसको। तो एक एक श्लोक, एक एक दोहा, एक एक वचन हमारी आंखें नहीं खोल रहा है। हमारी आंखें बंद है, बंद आंखों से हम सतमार्ग पर चल रहे हैं। अब बताइए बंधन कैसे कटेगा? अभी तो ये वो बंधन है जो आप आराम से एनालिसिस कर सकते हो, जिनका ये बंधन है या नहीं है, जीव के लिए ये बंधन है या नहीं है। तो गुरु हमको याद दिला रहा है, नहीं दिला रहा है ये बात कि ये संसार सराय, इसका मतलब ये देह सराय है, जीव मुसाफिर नहीं। तो जीव कैसा है? ये मुसाफिर है। क्यों? कुछ दिन इस देह में इस जीव को रहने के लिए मिलता है, और इसको रह के काम क्या करना है? मंगत खोज सत शांति औध जात है। हर पल तुझे याद रखना है कि ये देह की अवधि बीत रही है। इसी को माजी कह रहे हैं कि प्रेमी हर वक्त मौत की याद रख, यह है मौत की याद का अर्थ। बीत रही है, नहीं बत रही है। एक दिन जो कल का निकल गया, जिंदगी में लौट के आएगा? वो गई। तो सत शांति की खोज के लिए वो दिन तेरा बीतना चाहिए था। अब तू याद कर तूने क्या क्या बेवकूफी की कल के दिन, इस होश में रहते हुए तूने दिन व्यतीत किया या मदहोश होकर तूने दिन व्यतीत किया? मैं जीव हूं, इस देह के अंदर रह रहा हूं, ये होश तुझे रहा, या मैं देह हूं ये होश तुझे रहा? विचार करके तो देख, तब तुझे अपनी मूर्खता नजर आएगी कि मैं बुद्धिमान बहुत समझता हूं, हूंकता बड़ा मूर्ख, कि अपने बारे में मुझे होश नहीं है, दूसरों को चेतावनी दे रहा हूं, खुद बेहोश हूं। तो आप देखो एक एक दोहा कितनी स्पष्ट व्याख्या कर रहा है और आपको याद दिला रहा है। यदि आपके अंदर यह विवेक हर समय बना रहे तो ये वाणी आपको हॉन्ट नहीं करेगी, वाणी ऐसी पढ़ जाओगे आप। तो दूसरा बंधन नजदीक का, ये मेरी अपनी ही देह का बंधन। देह मरने वाली चीज है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और सीधा सीधा निर्णय कर दिया शास्त्रों ने कि देह प्रकृति के अंतर्गत आती है, ये प्राकृतिक चीज है, इसलिए ये भी परिवर्तनशील और नाशवान है। तो इसके प्रति मैंने, इसके स्वरूप प्रति जागरूक रहना है। मैं देह को सजाता हूं, संवारता हूं, दिखाता हूं, तो ऐसा दिखावटी व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? विचार करो, ऐसा दिखावटी व्यक्ति आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? तो देखने में तो आपको ऐसा लगा यह दिखा रहा है, लेकिन अंदर से उसका होश बना होगा। यदि वो आध्यात्मिक है तो अंदर से उसका होश बना होगा। कपड़े पहनने की भी बात आती है तो महाजी यही कहते हैं कि प्रेमी देश काल की मर्यादा के अनुसार कपड़े पहन, जो ज्यादा महंगे ना हो, और मतलब कि ऑड भी ना लगे। देश काल के मतलब क्या हुआ? जो देखने में ऑड ना लगे, कहेंगे याद ही पता नहीं कहां से आ गई। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ताकि तुझको ये अहंकार ना हो जाए और ये मोह गहरा ना हो जाए कि मैं देह हूं, तेरा होश बना रहे अपने पति कि मैं जीव हूं और देह मुझको एक सराय की तरह मिली है, या यूं कह लें सही नाम इसका दें तो ये एक मंदिर की तरह मिली है जो मेरे लिए उपासना घर है। इस उपासना घर में बैठकर मैंने अंतर्यामी प्रभु की उपासना करनी है जो इस देह के रोम रोम में बसे हुए हैं। इसलिए महाजी ईश्वर की परिभाषा क्या कर रहे हैं? ईश्वर एक शक्ति है। शक्ति का मतलब तो लोग एनर्जी समझ लेंगे ना, इसलिए एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वहां पर समता विलास में, चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति किसे कहते हैं? जानने वाली शक्ति। तो मैं भी चेतन शक्ति हूं, लेकिन ईश्वर में मुझ में अंतर क्या है, मैं लिमिटेड हूं, मेरी चेतना लिमिटेड है और ईश्वर की चेतना अनलिमिटेड है। तो सीमित चेतना है तो मुझे अपने देह के बारे में चेतना है, संसार के बारे में चेतना है, लेकिन मैं इन सबके बंधन में हूं। ईश्वर के अंदर चेतना तो है लेकिन वो किसी बंधन में नहीं है, वो निर्बंधन है। तो सीधा सा मतलब है, जो शक्ति निर्बंधन है, यदि मैं सारे बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं तो उस निर्बंधन शक्ति को मुझे जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा, विचार करके देखो। यदि मैं बंधन मुक्ति चाहता हूं तो उस निर्बंधन सत्ता को मुझे जानना पड़ेगा या नहीं जानना पड़ेगा। और गीता साफ कर रही है, भगवान कृष्ण कंफ्यूज्ड अर्जुन से कह रहे हैं, वो भी कंफ्यूज्ड है, अहम आत्मा गुडाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, सर्वभूताशय स्थिता, सारे प्राणियों के अंदर स्थित हूं। साफ कह रहे हैं, मैं ईश्वर की हनुमान जी में तलाश कर रहा हूं, मैं शंकर जी में तलाश कर रहा हूं, मैं मंदिरों मस्जिदों में तलाश कर रहा हूं। और वाणी कह रही है देह मस्जिद, हमने गुरु बना लिया लेकिन गुरु की बात यहां भी नहीं मान रहे हैं, हमारी मस्जिद अभी बाहर बनी हुई है। देह मस्जिद, ये देह मस्जिद है क्यों? क्योंकि खुदा इस देह के अंदर बैठा हुआ है, मेरे लिए उपासना घर है ये। तो अब देखिए, जब इस तरह एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस सांसारिक ज्ञान के आधार पर है या सत्पुरुषों के मार्गदर्शन के आधार पर है? समतावलास में इसके अलग कोई चीज लिखी हुई है क्या? विचार करके देखो, ये सारी बात समतावलास में है या नहीं है? लेकिन मैंने इस तरह सोचना कहां सीखा इससे? क्योंकि मनन ही नहीं किया, मैंने तो नॉलेज ले ली क्या क्या लिखा हुआ इसमें, उसके प्रश्नोत्तर भी रट लिए मैंने, किस प्रश्न का क्या उत्तर है, उससे क्या हो जाएगा, पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, कल यहां कुछ नहीं होने वाला आपको। तो दूसरा जो मेरा बंधन है वो इस देह का बंधन है, और मैं कितने गहरे मोह में हूं अपनी देह के प्रति कि मैं देह हूं। इसीलिए लोगों को दिखाता घूमता हूं मैं कितना ज्ञानी हूं, कितना होशियार हूं, कितना पैसा कमाता हूं, क्या पोस्ट है मेरी, क्या रुतबा है मेरा, फिर लोगों से तुलना करता है अपनी, इनसे मैं कितना ऊंचा हूं, और ये भूल जाता हूं ये निर्णय सारे मेरे, कभी सोचा मैंने बैठ के ये निर्णय मेरे देह करके हो रहे हैं या जीव करके हो रहे हैं? आप देखोगे कि मनन करने यदि आदत है आपकी, तब खुद देख सोच लोगे कि दिन भर मैं यही सोचता रहा हूं कि मेरा नाम शंकर है, मैं शंकर हूं और मैं देह हूं, और इस देह करके मैं देख रहा हूं, सोच रहा हूं, दिन भर मैं यही सोचता रहा। तो अपने मोह को अपने ही विचार के द्वारा आपने गहरा किया या हल्का किया, तो ये असत चिंतन हुआ या सत चिंतन हुआ? तो इस सत विचार के द्वारा जो शास्त्र विचार है, जो संत विलास का विचार है, जो गीता का विचार है, इस विचार के आधार पर मेरा चिंतन निर्भर चलना चाहिए था कि देह मेरे लिए बंधन है, देह मेरे लिए मोह का घर है, और गुरु कह रहा है देह साधन है ईश्वर प्राप्ति का। तो मैंने देह का उपयोग अपने वास्ते, केवल मेरा एक ही था देह का उपयोग, कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए इस देह का सदुपयोग करना था, मेरे लिए एकमात्र यही सदुपयोग है इस देह का बस। तो ये दूसरा बंधन मेरा है जो मैं सारी जिंदगी खोया रहता हूं, इस बंधन के बारे में विचार ही कभी नहीं करता। अब इसे और बारीक बंधन पे आइए, मुझको अपने ही मन का बंधन है। मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, वो भी शरीर ही है, वो भी प्राकृतिक चीज है, उसका भी ईश्वर से जीव से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ईश्वर का और जीव का मन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार संसार के बंधन को मैं पाले रहा, अपनी देह के बंधन को पाले रहा, इसी प्रकार मन के बंधन को भी मैं पाले रखता हूं। और मन के बारे में भी गुरु यही कह रहा है। मन के बारे में क्या निर्णय कर रहा है? मन संकल्पों का सागर है, इसमें निरंतर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, इच्छाओं के संकल्प उठते ही रहते हैं। और जो मनुष्य सतमार्ग पर नहीं चल रहा, इस ज्ञान के साथ जो आपके सामने बयान किया जा रहा है, इस होश के साथ जो सतमार्ग पर नहीं चल रहा, उसके मन की सारी इच्छाएं पांच विकार से युक्त होती, उसको यही कह रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये स्थूल शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है। तो सारी इच्छाएं विकार की इस मन के अंदर पल रही हैं, देह के अंदर नहीं पल रही हैं। देह को विकार का सागर इसलिए कहा गया है क्योंकि मन देह के अंदर ही है, वो इच्छाएं मन रूपी ऑर्गन के अंदर पल रही हैं। और जीव क्या करता है, कैसे जीवन जीता है, कि मन की जो इच्छाएं हैं उसमें से एक सिलेक्ट कर लेता है, दो सिलेक्ट कर लेता है, दस सिलेक्ट कर लेता है, उसको पूर्ण करने की कोशिश करता है इस देह के द्वारा, परिवार के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, यही तो करता है। तो बताइए पूरा का पूरा इसका जो सांसारिक जीवन है, ये पांच विकार से युक्त हुआ या पांच विकार से मुक्त हुआ? तो जो संसार में अच्छा मनुष्य है और जो बुरा मनुष्य है, जीवन सब अच्छे मनुष्य का भी बुरे मनुष्य का भी ये पांच विकार के अंतर्गत ही है। इसीलिए जो सतमार्ग का राही उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार गुरु कह रहा है। पूजा पाठ तो दुनिया बहुत करती है, हनुमान जी के देखो कितनी लाइन लगी होगी, शिव जी के देखो कितनी लाइन लगी होगी, देवी जी के देखो कितनी लाइन लगी होगी, मस्जिद में देखो कितने माता झुका रहे होंगे, लेकिन कत्ल भी कर रहे हैं, बीमारियां भी कर रहे हैं, बिजली की चोरी भी कर रहे हैं, कोई होश ही नहीं है, ना समाज का होश है, ना परिवार का होश है, ना अपने बारे में होश है। और धर्मात्मा भी बने हुए तो ये धर्म है ही नहीं। फैक्ट ये है कि इसको एबीसीडी नहीं पता धर्म की, ना अपने बारे में, ना ईश्वर के बारे में, तो क्या का धर्मात्मा हुआ? इसको देह धर्म कहते हैं, ये है देह धर्म है, जीव का धर्म नहीं है। तो विचार करो जरा, मन का जो बंधन है इसको मैं देख रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं और इसके लिए जी रहा हूं मैं, मेरे मन की इच्छा मैं तो पूरी करके छोड़ूंगा इसको, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। देखो ना, जो बंधन है, बंधन को गहरा करने के लिए जी रहा है इंसान, और अहंकार भी कर रहा है मैं ठीक जी रहा हूं, दूसरों से महान हूं। तो पूरा का पूरा मन का बंधन जीव को बेचैन कर रहा है। तो पहले स्थूल प्रकृति बेचैन कर रही है, फिर देह की अज्ञानता बेचैन कर रही है, फिर मन का बंधन मुझको बेचैन कर रहा है। अब बताइए आपको कौन बचाएगा? मन तुझे बचा नहीं सकता, देह तुझे बचा नहीं सकती, बाहर की प्रकृति तुझे बचा नहीं सकती, तेरा रखवाला कौन बचा? जरा विचार करके तो देख। एक चीज बच गई, वो भी इस देह के अंदर मौजूद है, उसी का नाम गुरु है, वो है मंगत, वो जीवन सत्ता है, वो तेरे जिस्म की जान है, इस जीव का जीवन है, क्योंकि ये जीव उसी का अंश है। जीव के अंदर चेतना गुरु की चेतना काम कर रही है, गुरु की चेतना ही जीव की चेतना है, उसका स्पार्क है इसके अंदर। इसीलिए अंतर्यामी प्रभु को परम पिता कहा जाता है। पिता नहीं कहा जाता, परम पिता कहा जाता है। पिता तो हम संसार को, संसारिक पिता को कहते हैं ना, जो खुद बंधन में है। ये परम पिता है जो अपनी संतान का कल्याण करता है। दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। मैं जीव हूं, इस दुखी जीव की पुकार सुनकर जगत वो जो गुरु है वो जगत से उद्धार करने के लिए आया है। तो जिसको गुरु के प्रति होश है वो गुरु को इस रूप में देखता है कि गुरुदेव आप तो मेरे अंदर विराजमान हैं और मेरा आपका संबंध इन तीन बंधनों से मुक्त होने के लिए, मन के बंधन से, तन के बंधन से, स्थूल प्रकृति के बंधन से, और मेरा आपका कोई संबंध नहीं और कोई कारण नहीं जिसके कारण मैंने आपसे संबंध बनाया। तो इसलिए मेरा एक ही रोना है कि गुरुदेव मुझे अपनी तरफ खींचो, इस मन तन और संसार से हटाओ मुझे। कौन बेटा, कौन देशवासी, कौन पड़ोसी, साफ कह रहे हैं महाजी, लिख रहे हैं संत रविदास में, देश भक्ति भी ईश्वर देह प्रणता है। कौन सा कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? गुरु तो लिख रहा है देश भक्ति भी देह प्रणता है, अर्थात ये देह के बंधन को बढ़ाएगी। तो गुरु हमसे क्या चाह रहा है, जब विचार करते हो अब पता लगेगा गुरु हमसे क्या चाह रहा है। गुरु हमसे यही तो चाह रहा है ना, जिसके कारण जीव दुखी है उस दुख से मुक्त होने के लिए उसने गुरु धारण किया है। तो गुरु का कर्तव्य नहीं बनता कि जीव को छुड़ाएगा उस बंधन से। तो आपको किससे छुड़ाएगा? मन की वासना से छुड़ाएगा, तन के मोह से छुड़ाएगा, संसार के बंधन से छुड़ाएगा। तो इसलिए सबसे पहले वो बात करेगा तो क्या करेगा, सादगी की बात करेगा। प्रेमी, संसार का भोग विलास कम से कम करो, इसके अंदर जो वासनाएं इच्छाएं कम से कम पालो। यदि तुम्हारा अपना कोई जिसको समझते हो मेरा है उसको भी यही रास्ता दिखाओ। तो अब बताइए, हम कौन से कर्तव्य बोध की बात करते हैं, गुरु कौन सा कर्तव्य बोध की बात कर रहा है? तो इसीलिए अब आपको समझ में आया कि महाजी ये बात क्यों लिख रहे हैं समता विलास में। लिखना पड़ी महाजी को, आज तक किसी शास्त्र में ये बात लिखी नहीं गई, महाजी को लिखनी पड़ी, क्योंकि वक्त ऐसा घोर भोगवादी आ गया कि हमारी बुद्धि सब कुंठित हो गई है बिल्कुल। लिखना पड़ा कि कम से कम 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम एक घंटा सुबह एक घंटे सायकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब होता है कंपल्सरी। और 30 वर्ष से 40 वर्ष तक डेढ़ घंटा सुबह डेढ़ घंटे सायकाल, और 40 से 60 दो घंटे सुबह दो घंटे सायकाल, 60 से ऊपर अधिक से अधिक। क्या डायरेक्शन है कि तूने इसके लिए जीना है? तेरा दिल धड़क रहा क्यों? कि पैसे की कमाई कम हो गई, दिल धड़कने लगता है, और सिमरन कम हो गया, दिल नहीं धड़कता, तो जस्टिफिकेशन तैयार कर लेता है। अरे आज तो संसार का स्टैंडर्ड ऐसा है, इसके अनुसार तो जीना ही पड़ता है, इसमें कहाँ संभव है इतना टाइम सिमरन को देना। तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि तुझको होश नहीं, तुझको होश ही नहीं है। तू है कौन? तेरा बंधन क्या है? गुरु कौन है? ये प्रकृति क्या है? कोई होश ही नहीं है, सीखा नहीं तूने। तुझे 20 साल सत्संग सुनते हुए हो गए, ये अध्यात्म की ABCD तुमने नहीं सीख पाया आज तक। आप विचार करके देखो, मैं कभी इस तरह से सोचता हूं? गुरु का तरीका तो सोचने का यही तो गुरु सोचने का तरीका दे रहा है आपको। क्योंकि जैसे मैंने अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी, उस मतलब कि इच्छा के साथ, उस लगन के साथ मैंने गुरु के शास्त्र नहीं पढ़े, उसमें मैं बेईमान बना रहा। संसार में सफलता के लिए मुझे बड़ी गहराई से अध्ययन चाहिए, और जीवन की सफलता के लिए मुझे कोई अध्ययन नहीं चाहिए। ये मेरे सोचने का स्टैंडर्ड है। शास्त्र कोर्स की टेक्स्ट बुक से 10 गुना ज्यादा गहराई से पढ़ने पड़ते हैं, उसकी लगन उसके मुकाबले में 10 गुनी ज्यादा होनी चाहिए आपके अंदर, कहां होती है। तब आपकी बुद्धि खुलती है, ये बातें हर समय आपको याद रहती हैं, फिर चलते फिरते उठते बैठते लोक व्यवहार करते ये बातें आपके दिमाग से हटती नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अलग खड़ा हो जाता हूँ जीव बन के, शरीर अलग है मैं अलग हूँ, बने तो रहोगे आप शरीर ही लेकिन होश में रहोगे, इसी को विवेक बुद्धि कहते हैं। तो अब बताइए, देह का बंधन है मुझे, मन का बंधन है, संसार का बंधन है, इसके अलावा दुनिया में कोई बंधन नहीं होता, तो इससे निर्बंधन कौन करेगा, ईश्वर के अलावा कोई बचा? तो ईश्वर के बारे में शास्त्र क्या कह रहा है, ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर शांति रूप है, ईश्वर सर्वज्ञाता है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निर्गुण है, देह भी सगुण है, मन भी सगुण है, प्रकृति भी सगुण है, 3 गुणों से युक्त है, तमोगुण सत्वगुण रजोगुण, ईश्वर निर्गुण है। इसका मतलब अच्छे कर्मों के भाव से भी मैंने मुक्त होना है, वो भी मेरा बंधन ही है, सत्कर्म भी मेरे लिए बंधन ही है, मैंने निर्गुण होना है, वहां जाके मेरी बंधन मुक्ति होनी है। अब बताइए कितना गहरा मार्ग है, और मैं कहां जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा हूं, जरा सा काम कर लेता हूं अच्छा सा वहीं जस्टिफिकेशन कर लेता हूं, मैं तो ठीक चल रहा हूं। आप बेटे से कहो बेटे बॉम्बे जाना है, वो पैदल चल दे नहीं, और 10 जगह रेस्ट करता रहे, और टाइम आपने निर्धारित कर दिया उसका इतने दिन में पहुंचना है, तो जो जानता है कि किसी स्पीड से जाना पड़ेगा इस टाइम में, वो पिता कहेगा बेटा ऐसे तो पहुंच चुका, ऐसे तो पहुंच चुका। तो गुरु भी ये कहता है कि जैसा तूने सोच रहा है ना अपने बारे में, जस्टिफिकेशन तैयार कर रहा है, ऐसे तो तू पहुंच चुका। तो ये होश ही नहीं है कि जितने संस्कार तू साफ करेगा ना इसमें ऐसे स्पीड से चल के, उससे दुगने संस्कार पीछे से इकट्ठे भी कर लेगा, तू तेरे नए ट्रैक मन में तैयार हो जाएंगे गुणों के, तू पहुंचेगा कहां। इसलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी को जो ढीला था, ऐसी जस्टिफिकेशन तैयार करता था अपने लिए, प्रेमी इसमें जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए, अंदर इतनी उमंग होनी चाहिए, मैदान अमारा की अमारा। पूरे शौक से, पूरी कोशिश से, पूरी लगन से इस मार्ग पे चलने की जरूरत है, क्योंकि बंधन बड़ा गहरा है, जिंदगी की जो आयु है आपकी बड़ी थोड़ी है, इसमें एक दिन भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो आज तो करते हैं कल को देखेंगे, हर दिन कीमती है, पूरी लगन के साथ, पूरे विवेक के साथ, और यदि विवेक आपके अंदर कायम रहा बुद्धि में, तो वैराग्य आपके अंदर स्वाभाविक रूप में होगा, ये विवेक का लक्षण है। जो बंधन है वो दुखदाई होता है नहीं होता है, तो मन तेरा दुखदाई, तन तेरा दुखदाई, संसार तेरा दुखदाई, तो इसमें तेरी लगन होगी या इससे बचने की तलाश होगी। मैं तो इसमें लगा हुआ हूं ना अभी, बड़ी बड़े शौक से लगा हुआ हूं, और जिंदगी निकली जा रही है, तो इसमें राग तेरा खत्म हो जाएगा। राग काय का है, ये 5 विकार का ही राग है तेरे अंदर, तो 5 विकार बढ़ने से बंद होंगे और वैराग्य भाव तेरे अंदर हर वक्त बना रहेगा, लेकिन वो तभी बना रहेगा जब तेरे अंदर विवेक कायम रहेगा, और विवेक ऐसे कायम नहीं रहेगा। जैसे मान लिया मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप यदि सुनने के बाद भी कोशिश करो ऐसे एक्सप्लेन करने की, आप नहीं कर पाओगे, आप देखोगे कि फेल हो रहा है, क्योंकि मनन नहीं है। अब आप हर वक्त ऐसे ही सोचते रहोगे तो विवेचन भी वैसे ही करते रहोगे, कहीं मैदान में खड़ोगे विवेचन कर दोगे, क्योंकि आपकी सोच हर समय वैसी, तो विवेक आपके अंदर फिर वो स्थायी होने लगता है, समझे नहीं? उस विवेक के प्रकाश में आपके अंदर वैराग्य भाव बना रहता है, अपने बंधन को हर वक्त आप उस पर निगाह रखते हो। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर हर वक्त ऑटोमेटिकली याद आता है, क्योंकि केवल उसके अंदर उसको भविष्य दिखाई पड़ रहा है, बाकी सारी प्रकृति सारा जीवन मैं इसके अपनी देह के ये बंधन रूप है इसके लिए। वो किससे मोह करेगा? वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप में लोगों को बंधन में देखकर, लोगों को दुखी देखकर, उसमें अपना परिवार भी शामिल है, उनके दुख दूर करने की कोशिश करता है, और उसके दुख दूर करने के तरीके में अध्यात्म मार्ग सहज रूप में ही शामिल हो जाता है, क्योंकि अंदर से जानता है ये भूख लग रही है, इनको खाना तो देना मेरा फर्ज है, दूंगा इनको, लेकिन काश ये स्वाद से मुक्त हो जाएं, स्वाद के लिए ना खाएं। आप ऐसा भोजन देने की कोशिश करोगे ताकि स्वाद का बंधन उनके अंदर भविष्य में ना पले, कोशिश आपकी होगी, माना ना माना तो उनका उनका है। तो कर्तव्य भी आप आध्यात्मिक भाव से पूर्ण करने की कोशिश करोगे, मेरा बेटा है इस भाव से नहीं, क्योंकि वो जीव आपको बंधन में दिखाई पड़ रहा है, वो जीव इस बंधन के कारण दुखी दिखाई पड़ रहा है, तो आपके मन में भाव आएगा कि कैसे इस बंधन से मुक्त हो, कैसे इस दुख से मुक्त हो, तो आप उस दुख को देखोगे, अभी आप बेटे के दुख को देख रहे हो, मोह में फंसे हुए हो, तो कर्तव्य भाव अभी आपको नहीं पता। इसीलिए मान कहते प्रेमी स्वार्थी मत बन, स्वार्थी नहीं बनेगा तो जो कुछ भी शक्तियां थी, जो कुछ भी गुण तुझे प्राप्त हैं, दूसरे का दुख दूर को नहीं कोशिश करेगा, और जैसे जैसे तेरे अंदर ये शास्त्रों को मनन करने की आदत पड़ेगी, वैसे वैसे इन बातों को गहराई से तो एनालिसिस करना सीखेगा। ये 24 घंटे का काम है, पूरी जिंदगी का काम है, ये एक दिन दो दिन का काम नहीं है, ये नहीं है मैं जान गया बस, ना ना ना, ये होश में रहने का काम है, क्योंकि हर पल मैं अपने आप को देह करके जी रहा हूँ और गलतियां कर रहा हूँ, हर पल मेरे अंदर ध्यान बना रहना चाहिए कि मैं जीव हूँ, देह मैं जानता हूँ ये परिवर्तनशील है, ये नाशवान है, ये मर जाएगी, लेकिन मैं नहीं मरने वाला, क्योंकि मेरे अंदर चेतना है, लेकिन जो गलतियां कर जाऊंगा सारे संस्कार इस मन में इकट्ठे हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर मेरे साथ जाएगा, तो इन संस्कारों को मैंने गुरु के अनुसार निर्माण करना है मेरे, इसको आध्यात्मिक संस्कार कहते हैं, इसको सतोगुणी संस्कार कहते हैं, तो ये संस्कार मेरे अगले जन्म भी काम आएंगे, इस जन्म तो काम आ ही रहे हैं, अगले जन्म भी काम आएंगे, तो ये पूंजी मैं इकट्ठी करके जाता हूं, तो इस जन्म में भी मैं अपने बंधन को ढीले कर जाता हूं, और आशा रहती है अगले जन्म में पूरी तरह से इस बंधन को, बंधन से मुक्त होकर अपना जीवन सफल करूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वमाया।